मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आभार किस बात के लिए? इस बात के लिए कि फिर से आप लोगों के ढेर सारे मेल मिले और उसमें ये कहा गया कि सर नहीं, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो वीक चल रहा है इसे कंटिन्यू किया जाए। इसके दो पक्ष हैं। अपने बारे में अगर मैं बात कहूं तो मुझे इससे यह आत्मसंतोष मिला, या यूं कह लीजिए कि विश्वास हुआ, कि मैं जो बातें फिलहाल कर रहा हूं वे कहीं ना कहीं आप सबके लिए उपयोगी हैं, आप सबको अच्छा लग रहा है, तभी तो आप कह रहे हैं कि इसे आगे बढ़ाया जाए। और आप लोगों के पक्ष से मैं आभार किस लिए दे रहा हूं, वो इसलिए कि कम से कम आप लोगों ने मुझे यह बताया कि नहीं इसे कंटिन्यू किया जाए। दोस्तों, यहां मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपका टीचर होता है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप बेहतर हैं तो टीचर को आपसे बेहतर बनना पड़ेगा और इसके लिए फिर वो खूब कोशिश भी करेगा। अगर आप लचर हैं, आप शांत हैं, आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है कि टीचर को भी ये लगने लगता है कि यार अब इनको तो जो कुछ बता दो, जैसा भी बता दो वैसा चल जाता है, तो छोड़ो तो हम भी क्यों मेहनत करें। लेकिन मैं एक ऐसा टीचर हूं जो मेहनत करने में विश्वास करता हूं और आप लोग मुझसे ये मेहनत करा रहे हैं, इसीलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों के इस आदेश को या अनुरोध को कह लीजिए पूरे खुले मन से स्वीकार भी करता हूं। और अब हम लोग कुछ दिनों तक प्री एग्जामिनेशन के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे हम इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, और इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, शायद आप लोगों को पसंद आएंगी। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आज दो खबरें मैं आपको देना चाहूंगा, जिसमें एक खबर थोड़ी सी दुखद है और वो है नरेंद्र कोहली जी का निधन होना। दोस्तों, नरेंद्र कोहली हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकारों में से थे और खासकर हमारे यहां जो चरित्र हुए जैसे राम है, कृष्ण है, रामचरितमानस है, स्वामी विवेकानंद हैं, इनको लेकर के इन्होंने उपन्यास लिखे और बहुत ही खूबसूरत उपन्यास लिखे हैं और ज्यादातर उपन्यास मैंने पढ़े हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं जिन्हें नरेंद्र कोहली जी का स्नेह प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं जब दिल्ली में था तो अक्सर नरेंद्र कोहली जी से मुलाकात होती थी, मुझे उनके घर पर जाकर के बातचीत करने का सौभाग्य भी मिला है। और जब भी वर्ल्ड बुक फेयर में मैं जाता था, पिछली बार तो आप जानते हैं कि स्थिति थोड़ी सी बदल गई थी, जब भी वर्ल्ड बुक फेयर में मैं गया हूँ निश्चित तौर पर नरेंद्र कोहली जी से मुलाकात होती थी। दूर से देख लेते थे और आवाज देते थे। बहुत ही सज्जन व्यक्ति, बहुत ही प्यारे व्यक्ति, अफेक्शनेट जिसको आप कहते हैं, जो जानते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है, जो जानते हैं कि दूसरों को प्रेरित कैसे किया जाता है, उस तरह के व्यक्ति थे। तो डेफिनेटली नरेंद्र कोहली जी का जाना कहीं ना कहीं मुझे अपने ही जीवन के एक छोटे से हिस्से का टूट कर और मुझसे दूर कहीं चले जाना जैसा एहसास हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरण में स्थान प्रदान करे और उनके घर वालों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, दूसरी बात है कि जो केरल का हाई कोर्ट है उसने अभी एक बात कही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है, खासकर महिलाओं के एम्पावरमेंट से लेकर के है। दरअसल हुआ यह था कि केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड है, उन्होंने नौकरी के लिए एक विज्ञापन निकाला था और उसमें मेंशन किया हुआ था कि यह विज्ञापन या यह कार्य सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए ही है, यानी कि वही पुरुष ही आवेदन करें। तो ठीक है, इसको लेकर के लोग कोर्ट में गए और केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये बात कही कि किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर नियुक्ति करने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह एक महिला है और रोजगार की प्रकृति कुछ ऐसी है कि उसे रात में काम करना होगा, इसलिए महिला उम्मीदवार उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा है कि महिला का योग्य होना ही उसकी नौकरी के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान है। अगर महिला योग्य है उस पद के लिए तो सीधी सी बात है कि उसे वह पद दिया जाना चाहिए, वह अपने आप में ही सुरक्षात्मक प्रावधान को एक प्रकार से कह लीजिए कि प्रूफ करती है। तो दोस्तों, इस तरीके से बाकायदे कोर्ट ने संविधान के जो अनुच्छेद 14, 15 और 16 हैं, उन प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उस विज्ञापन को इन प्रावधानों का उल्लंघन माना। और यहां तक कि जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो कार्यस्थल हैं वहां इस तरह की व्यवस्था की जाए कि महिलाओं का शोषण न हो। चूंकि वीमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी है, तो मुझे लगा कि नहीं, आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए। और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे जो कार्यस्थल हैं उन्हें हम इस तरीके का बनाएं कि महिलाएं भी वहां काम कर सकें, केवल कार्यस्थल नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, ये कह करके योग्य महिलाओं को आप यहां काम करने से इनकार नहीं कर सकते। तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। दोस्तों, आइए अब मुख्य विषय पर बात करते हैं। और आज मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो अनुमान लगाने की जो ताकत है इसके अलग अलग आयामों के बारे में बात करूंगा। और डेफिनेटली इसके लिए कुछ मुझे ज़्यादा लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि आप सब मुझे वो लेक्चर्स देने की अनुमति प्रदान करेंगे। अब हम सिस्टमेटिक तरीके से बात करते हैं। देखिए, पिछले सप्ताह जो मैंने बातें की थी, मेरा पर्पस, अगर एक पर्पस आप पूछें कि सर क्यों आपने ये बात की, चार चार लेक्चर आपने दिए तो क्यों दिया, तो केवल एक ही उद्देश्य था, उसके साथ दूसरे उद्देश्य भले ही पूरे हो गए। और मेरा उद्देश्य यह था कि जब भी आप कम से कम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, मैं दूसरी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम अगर आप सिविल सर्वेंट सच में बनना चाहते हैं और आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इत्मीनान के साथ कीजिए, हड़बड़ी में मत कीजिए। ये प्रकृति का नियम नहीं है। हमारे यहां कहावत है कि गीदड़ की जल्दबाजी में बेर नहीं पका करते, बेर अपने समय में ही पकेंगे। गीदड़ हड़बड़ हड़बड़ कर रहा है कि साहब अब पक जाए, कल पक जाए, ऐसा नहीं होता है। आपके पास समय नहीं है, आपकी समस्या है, आप देखिए कि कहां से समय निकालते हैं। यूपीएससी को इससे कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी को तो इस बात से मतलब है कि वो जिस तरह के माइंड की तलाश कर रहा है प्रशासक बनाने के लिए, वो आप हैं या नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो दूसरों के पास बहुत समय है, वो उनमें से ले लेगा, आप रह जाएंगे। तो पहली बात कि आप जिन चीजों को भी पढ़ें, चाहे अनसॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर्स के पढ़ रहे हो, जैसा कि मैंने आपसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, चाहे आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, बहुत इत्मीनान के साथ पढ़िए, तभी वो आपके दिमाग में रहेगा। अदरवाइज पढ़ना न पढ़ना बराबर है। आपको आत्मसंतोष जरूर हो रहा है कि अरे यार मैंने इतने घंटे की पढ़ाई कर ली, लेकिन दिमाग में है कितनी बातें। और परीक्षा को तो इस बात से मतलब है कि आपके दिमाग में बातें कितनी हैं। बस एक ही, एकमात्र यही उद्देश्य मेरा पिछले सप्ताह का था। अब डेफिनेटली मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट आयाम पर बात करूंगा। और जो सबसे बड़ा जो इसका आयाम है और उसी के अलग अलग हम कोण से बात करेंगे, और वो है कि जो हम अनुमान लगाएंगे एग्जामिनेशन में, प्री एग्जामिनेशन में, उसके क्या क्या आधार हो सकते हैं, उसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। मैं पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसी को आधार बना करके आपसे बातें करूंगा ताकि आपको अलग अलग दृश्य दिखाई पड़े। जैसे लुका छिपी का आप खेल खेलते हैं ना, तो अगर आपको मालूम है कि कोई कहां कहां छिप सकता है तो आप वहीं जा जा करके लोकेट करेंगे और उसको ढूंढेंगे कि अच्छा यहां छिप सकता है, यहां छिप सकता है। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है कि कहां कहां लोकेशंस हैं तो फिर आप हर जगह हाथ पैर मारते रहेंगे। तो मैं आपको वो लोकेशंस बताऊंगा जिन लोकेशंस को पकड़ करके या जिन सूत्र को पकड़ करके आप सही उत्तर तक पहुंच सकेंगे, और इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखते हैं, इस सप्ताह भर तो बात करेंगे, आगे जैसी भी स्थिति होगी वैसा फैसला करेंगे। दोस्तों, एक बात आइए इस मैथमेटिक्स को देख लेते हैं। याद होगा कि पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि मेरा ये लेक्चर उन लोगों के लिए ही ज्यादा उपयोगी है जो एटलीस्ट 40% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इतनी तैयारी हो गई है। मेरे पास कुछ मेल आए हैं कि सर हम कैसे फैसला करें कि हम 40% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा है। अनसॉल्व्ड पेपर मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, पिछले साल के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उनको सॉल्व करके देखिए कि आप 40% सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो 40% मैं सही करने की बात कर रहा हूं, ये टोटल सही करने की बात नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप 40 क्वेश्चन पे निशान लगाते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि इन 40 में से 40 सही हैं और 60 अभी बाकी हैं। तो मेरी जो कोशिश है वो इन 60 में से कम 12-13 को सही बनाने की कोशिश है। याद रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, 60 में से, बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप देखिए, एक तो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको 40 ही मैं कह रहा हूं कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करने हैं। अब आप आईएएस बनने जा रहे हैं, अगर सच में इतनी भी क्षमता नहीं है तो आप बताइए कि देश की सबसे ऊंचे पद की जो बागडोर है वो आपके हाथ में क्यों सौंपी जानी चाहिए? क्या आप अपने जिले में कोई अयोग्य कलेक्टर, अयोग्य एसपी, अयोग्य डॉक्टर, अयोग्य टीचर, आपके घर में काम करने वाला कोई अयोग्य व्यक्ति पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आपको एक स्तर को तो हासिल करना ही पड़ेगा। तो 40 तक के स्तर को आपको प्राप्त करना ही होगा और आप यहीं तक कर सकते हैं। 40 को ज्यादा ज्यादा बढ़ा करके ना 45 तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आप जो टॉपर्स हैं उनसे बात करके देखिए, और ये मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर नहीं बता रहा हूं, बहुत लोगों से बातचीत करने के आधार पर बता रहा हूं। 40 क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अब रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस हैं। मैं 60 क्वेश्चंस में से केवल 30 की बात कर रहा हूं, 30 की बात कर रहा हूं। 30 आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं, उनको टच नहीं करना है। आप एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो सिर पर से निकलता चला जा रहा है। जैसे जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए नो डाउट कि जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत कठिन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बहुत से स्टूडेंट ने मेल लिख करके मुझसे जानना चाहे कि सर इसका हम क्या करें, और वास्तव में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो बहुत जायज है, घबराए हुए हैं और ये स्वाभाविक है। तो दोस्तों, इसका एकमात्र हल है कि मैंने कहा कि 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ ही देने हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इन 30 क्वेश्चंस में से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस शामिल कर लीजिए कि ये मुझे छोड़ने हैं। हाँ, आप पढ़िए, 10-12 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटी के हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए कठिन होंगे। आप पढ़िए और आपको लगता है कि इसमें से एक दो सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज उन्हें आप छोड़ दीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि आप तैयारी कर लीजिए, बहुत तैयारी कर लीजिए, खूब पढ़ लीजिए, यहां से पढ़ लीजिए, तो मुझे लगता है कि मैं सही मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूं। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि उसकी तैयारी करना बहुत मुश्किल है। तो आप क्यों वहां अपना दिमाग खपा रहे हैं? क्योंकि उससे आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो हमारा स्कोर चाहिए कि हम प्री क्वालिफाई कर जाएं, और हम उसको छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वहां हम जितनी मेहनत करेंगे उससे 10% दूसरी जगह मेहनत करके ज्यादा लाभ ले लेंगे। तो हमारी रणनीति का ये हिस्सा होना चाहिए। तो दोस्तों, 100 प्रश्न हैं, आप मैथमेटिक्स को लेकर के चलिएगा, तभी आप मेरी बात को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाएंगे और अपने अंदर एक बहुत अच्छे किस्म कि आपको दृष्टि विकसित होती हुई लगेगी, और साथ ही साथ जो बहुत जटिलताएं हैं आपको लगेगा कि नहीं, अब जटिलताओं से भी धीरे धीरे आप उबर रहे हैं, और आत्मविश्वास भी पैदा होगा। तो मैथमेटिक्स है कि 100 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से 40 प्रश्न आप बिल्कुल डायरेक्ट सही सही हल करने की स्थिति में हैं, 30 प्रश्न आपको और हल करने हैं अनुमान के तहत, हम इस पर बात करेंगे, और 30 प्रश्न आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं, और जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन तो है ही। बस आज मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए, आगे हम इस पर और बात करेंगे। लेकिन आप लोग लगातार संवाद बनाए रखिए, उससे मुझे आप यूं कह लीजिए कि मार्ग दिखाई देगा कि हाँ मुझे किस रास्ते पर चलना है। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, मुकेश गुप्ता जौनपुर उत्तर प्रदेश से, शोभित सिंह सिंगुता हिमाचल प्रदेश से, प्रीतु ठाकुर स्वाति रानी कीरतपुर उत्तर प्रदेश से, साहिल गवई रायमा साक्य, सोनल सरतबे, जयेश पटेल और सावन कुमार जमुई बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।